ஓம் சாந்தி. ஆப் சப் பாபா கே இஸ் தபோவன் சாந்திவன் மே பஹோத் அச்சி தபஸ்யா கர் ரஹே ஹோ. ஐசே லக்தா நீ கித்தனே சப் பாய் பஹனே யஹா பர் பஹுஞ்சே ஹே. பஹோத் அச்சி வைப்ரேஷன் சாரோ தரப் ஃபைல் ரஹே ஹே. சப்கே அந்தர் ஏக் ஹி லகன் ஹே கி அந்திம் சமய ஜோ பஹுத் சமீப் ஆ ரஹா ஹே உஸ் அந்திம் சமய கே பிரமாண் மே அந்திம் பேப்பர் மே சஹஜ் பாஸ் ஹோ ஜாஊ. பாபா நே அவ்யக்த ஹோனே கே பாத் ரிவைஸ் கோர்ஸ் ஷுரூ கியா. 69 से मुरलियां रिवाइज हुई. बाबा ने कहा कि बच्चे जब परीक्षा का समय आता है तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है. कुछ समय के बाद अव्यक्त बाबा ने रिवाइज कोर्स में शब्द ऐड किया रियलाइज करो. அபி ரிவைஸ் கோர்ஸ் தோ பஹுத் கர் லியா அபி ரியலைசேஷன் கோர்ஸ் ஷுரூ கரோ. உஸ்கே தோடே தின்கே பாத் ஓர் ஏக் முரலி சலி கி ரியலைசேஷன் கோர்ஸ் கே பாத் லிபரேஷன் கோர்ஸ் கி ஜரூரத் ஹை. லிபரேட் கர்னே கே லியே பாபா ஆயே ஹை और हम सबको इस दुनिया से लिबरेट करके देह से संबंधों से देह की दुनिया से लिबरेट करेंगे और अपने साथ वापस ले जाएंगे. और लिबरेशन कोर्स में हर बात में मुक्त स्थिति चाहिए. लिबरेट कहीं पर भी फंसा हुआ नहीं, कहीं भी बंधा हुआ नहीं. तो आज अंतिम कोर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लो. बाबा हम सबको अंतिम पेपर की रिजल्ट भी बताते हैं, अंतिम पेपर के लिए समय भी बताते हैं और अंतिम पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे वो भी बताते हैं. ऐसा कोई टीचर दुनिया में नहीं होगा जो पहले से ही सब कुछ आउट कर दे. समय भी आउट किया, पेपर का प्रश्न भी आउट किया और साथ साथ उसके परिणाम को भी बता दिया. हम सब उस अंतिम कोर्स के लिए तैयार हैं. तैयार हैं सभी. सब जानते हो कि अंतिम परीक्षाएं जो कभी मन चित्त में न हो, कभी सोचा भी न हो, अचानक ऐसे पेपर आते हैं. अभी भी कई ब्राह्मणों के आगे ऐसे पेपर आ जाते हैं जो एकदम स्थिति को हिला दें अचानक. लेकिन बाबा कहते हैं जिसने अंतिम कोर्स की तैयारी कर ली है वो तो अंतिम पेपर में सहज पास हो जाएंगे. तो वो अंतिम कोर्स का रिवीजन हम कर रहे हैं. किन किन बातों को हमें क्रॉस करना होगा. सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे एक सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हो. दो दिन पहले की मुरली परसों अव्यक्त बाबा की सुन रहे थे. चेक करो किसी भी किनारे से रस्सी बंधी हुई तो नहीं है. इतनी तैयारी है कि जीते जी सब कुछ सफल करके सबसे छुट्टी ले लो. बाबा ने क्या कहा, सबसे छुट्टी ले लो. उसी आधार से बाबा के घर में जीते जी मरने के भोग की प्रथा शुरू हो गई। लोग शरीर छोड़ने के पहले अपना जीते जी सब कुछ बाबा के आगे अर्पित करके बाबा को भोग लगा देते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, हे बच्चों, अंतिम समय के पहले ये कोर्स सबने किया है, सब कुछ समेटा हुआ है, कोई भी बंधन, कोई भी आकर्षण, कोई भी रस्सी अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करेगी। क्या इस शरीर रूपी चोले को सेकंड में उतार सकते हैं? ऐसा अभ्यास अगर न किया हो तो जरूर करना। ज्ञान तो है और इतने वर्षों से आप सब ज्ञान में चल रहे हो, सब जानते हैं। बाबा ने पहला लेसन यही बताया, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश होकर पार्ट बजाती है और जब इससे अलग हो जाती है तो यह शरीर मिट्टी हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सभी भट्टी के अंदर भी ये अभ्यास करते हैं, एक सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाएं, ये अलग है, मैं अलग हूँ। थोड़ा सा रिवाइज करने के साथ रियलाइज भी कर लो कि सचमुच मैं एक सेकंड में इस चोले को उतार सकता हूँ, या कहीं ना कहीं किसी भी बंधन में ये चोला टाइट है। इस चोले को टाइट करने वाली सबसे बड़ी रस्सी कौन सी है? वो है संस्कारों की रस्सी। कोई न कोई संस्कार जो बहुत प्रबल है वो इस शरीर से डिटैच होने नहीं देता। इसलिए हम सब एक सेकंड में इस शरीर रूपी चोले को छोड़ने का अभ्यास करें। अभी तक न किया हो तो अभी आज बिस्तर पर जाने के समय इस शरीर को ऐसे छोड़ना जैसे एक सेकंड में मैं आत्मा इससे निकल गई और बाबा के पास उड़ के चली गई। ये शरीर पड़ा है, मैं अलग हो गई। और जब सवेरे आंख खुले तो ऐसे ही लगे जैसे मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। वास्तव में योग की ऊंची स्थिति जिसमें देह और देही, शरीर और आत्मा अलग अलग अनुभव हो, और ये अंतिम पेपर में पास होने के लिए अंतिम कोर्स की पढ़ाई है। फर्स्ट लेसन भी यही था और लास्ट भी यही है। इसका आप सब खूब अभ्यास करके देखना, इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। अगर ये अभ्यास हमने किया है तो कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाएंगी, शरीर का हर अंग सुगंधित हो जाएगा, सब प्रकार की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि मैं तो इस शरीर में मेहमान हूं, कर्म क्षेत्र पर खेल खेलने के लिए आया हूं, कर्म पूरा हुआ अपने घर जा रहा हूं। ये अंतिम कोर्स का पहला पेपर है और दूसरा पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लास्ट पेपर है। और इस लास्ट पेपर के अंदर हम सब को चेकिंग करना जरूरी है। आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं, कईयों के बहुत बड़े परिवार हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और संबंध हैं। कई बार हम चलते चलते अनुभव करते हैं कि हम सबसे डिटैच हैं, हमारा कोई में मोह नहीं है। लेकिन जब कोई परीक्षा आती है तब उस मोह का पता चलता है। अचानक कोई छोटी आयु में शरीर छोड़ देता, परिवार के सभी सदस्य माँ बाप बैठे हैं और बच्चा बीच से निकल जाता, शरीर छोड़ जाता, अचानक कुछ हो जाता, तो उस परिवार में बहुत जबरदस्त झटका लगता है, बहुत फीलिंग आती है ये क्या हो गया। और उस समय मोह का, उसकी सूक्ष्म रगों का पता चलता है। पहले कभी सोचा नहीं होता कि ऐसा भी होगा, लेकिन इस कलयुग के अंतिम सीन में कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस पेपर में, अंतिम कोर्स में अपने आप को चेक करो, सचमुच मैंने देह, संबंध और दुनिया इससे किनारा किया हुआ है, किसी को अपना सहारा तो नहीं बनाया है, किसी भी संबंध में मेरे मेरे की रस्सी बंधी हुई तो नहीं है। कभी हम हाथ अगर उठवाएंगे तो सब कहेंगे मेरी कहीं नहीं बंधी है, मैं बिल्कुल मुक्त हूं। लेकिन ये रियलाइज करने की बात है, एकांत में जाकर के अपने आप से पूछना है, मैंने किसी भी दैहिक संबंध को अपना समझ करके अधिकार तो नहीं रखा है, उससे कोई अपेक्षाएं तो नहीं रखी हैं। अगर किसी भी अपेक्षाएं होंगी, किसी भी प्रकार का अधिकार रखा होगा, तो हो सकता है अचानक के पेपर में फेल हो जाएं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे सबसे किनारा कर लो, उपराम हो जाओ, कर्तव्य निभाओ, सेवाएं दो, पालना करो, लेकिन फंसना नहीं। न किसी को अपने में फंसाना है, न फंसना है। अंतिम पेपर है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक ही स्मृति रहे। चेक करना है कि हर संबंध एक सर्वशक्तिमान बाबा के साथ अटूट है, या कोई भी पेपर आएगा तो संबंध टूट जाएगा। कई प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, परिवार में रहते हो, और जब पुराने हो जाते हैं, ज्ञान में चलते चलते लोग समझते हैं ये तो शायद न भक्ति करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, न कहीं संबंध निभाते हैं, कोई के शादी ब्याह में भी नहीं जाते, कई तो बहुत पक्के हैं, तो वो समय देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जब आपके पास ये समय आएगा तब देखेंगे क्या होगा, और बोल भी देते हैं कई बार ऐसा। लेकिन क्या इतना एक बाबा में सर्व संबंधों का रस लिया है, विश्वास है कि अगर ऐसा कोई पेपर आएगा तो बाबा अपने आप पास करा देगा, किसी के आगे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा, हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं ज्ञान में शुरू में चला पूरा परिवार, तो हम दो भाई बहने थे, पिताजी, चाचा जी, माता जी सभी ज्ञान में थे, एक दादाजी को छोड़ करके। पिताजी ने सब संबंध काट दिए, ज्ञान मिला, नशा चढ़ा, किसी के पास मुझे नहीं जाना है, किसी की शादी में, ब्याह में जाना ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चला, लौकिक पढ़ाई पढ़ता रहा, घर में क्लास चलती थी, मुझे पता ही नहीं चला संबंध भी कोई होते हैं, मामा मामी मौसी क्या होते हैं। उन्होंने कोई के साथ संबंध नहीं रखा, एक बाबा दूसरा न कोई। लोग कहते थे, देखना बच्चे बड़े होंगे, शादी करनी पड़ेगी, आपको भी साथ निभाना पड़ेगा, फिर उस समय देखेंगे क्या करोगे। उनको, पिताजी को इतना निश्चय था जो होगा अच्छा होगा, बाबा को हमने जीवन दी है, बाबा हमारा है, इसलिए वो अपने आप सब ठीक कर देगा। और सचमुच ऐसे बाबा ने पार किया, जो कभी भी किसी के आगे लौकिक के आगे जाना नहीं पड़ा, सब समर्पित हो गए, सब सेवा में लग गए। निश्चय की विजय है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना पता नहीं ये करना ही पड़ता है, संबंध निभाने ही पड़ते हैं, और बाबा से पूछोगे, दादियों से पूछोगे, निमित्त बहनों से पूछोगे तो कहेंगे निभाना तो चाहिए, छुट्टी देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आप हैं, व्यवहार है, निभाओ। लेकिन क्या डिटैच होकर निभा सकते हो? जो अंतिम पेपर में, अंतिम कोर्स में कोई भी आत्मा, कोई भी बंधन अपनी ओर खींचे नहीं, इतना नष्टो मोहा सबसे रस्सी टूटी हुई है, चेक करना, रियलाइज करना। रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन रियलाइज जरूर करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का अंतिम लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। हम सब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ के पीछे हमारा लक्ष्य है कि ये ब्राह्मण जीवन इसी संगम पर फरिश्ते में ट्रांसफर हो जाए। जितने समय से आप सब ज्ञान में हैं, अंतिम समय को सामने देखो, कितनी पौढ़ियां हम आगे बढ़े हैं, कितना हम चढ़े हैं, वहीं के वहीं तो नहीं खड़े हैं। कई तो पक्के सच्चे ब्राह्मण भी नहीं बन पाए। ब्राह्मण माना दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति शुद्ध पवित्र, मन वचन कर्म से शुद्धता पवित्रता स्वच्छता निर्मलता दिव्यता ब्राह्मण जीवन में दिखाई देनी चाहिए। जब ब्राह्मण सच्चे और पक्के बने तब फरिश्ता बने, और फरिश्ता बने तो ट्रांसफर हों देवता बनेंगे। ये हमारा इस पढ़ाई का लक्ष्य है। और फरिश्ते की परिभाषा हमें बाबा सुनाते हैं, जिसका देह और संबंध पदार्थों से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई अलग रिश्ता नहीं है, फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। ये परिभाषा सुनी होगी। आज मैं अलग ढंग से आपको बताता हूं कि अंतिम समय में फरिश्तेपन की स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी होगी। तीन बातें हैं। एक तो फरिश्ता जीवन सबके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति वाली होगी, हर आत्मा का भला हो, हर एक का कल्याण हो, वो सबका रक्षक होगा, शुभ चिंतक होगा। शुभ चिंतन से भरपूर है वो फरिश्ता है। दूसरा, बिल्कुल निश्चिंत होगा, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई चिंतन कल क्या होगा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, उसका भी चिंतन नहीं है, और जो बीत गया उसकी कोई चिंता नहीं है, जो हो गया फुल स्टॉप। इसलिए फरिश्ते जीवन की स्थिति निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। आप सभी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में हैं, जवाबदारियां हैं, और उनके बीच में रहते, सबको संभालते निभाते साथ लेके चल रहे हैं। प्रवृत्ति का आदर्श तो यही है कि हम पूरा ही साथ निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए भी कहीं भी लटके और अटके नहीं हैं, डिटैच हैं। तो फरिश्ते स्वरूप की तीन क्वालिटी मैं आपको सुना रहा था, अगर वो स्टेज समीप आ रही है तो वो तीनों बातें जीवन में कहाँ तक आ रही हैं, आई हैं। एक शुभ चिंतक वृत्ति कहाँ तक है, निश्चिंत स्थिति कहाँ तक है, और तीसरा, डबल लाइट स्वरूप में कहाँ तक रहते हैं, बिल्कुल हल्के, कोई चिंतन नहीं, कोई बोझ नहीं, और प्रकाश स्वरूप है, शरीर में है, शरीर को छोड़ करके फरिश्ता नहीं बने हैं, लेकिन शरीर में होते हुए भी अपनी लाइट स्वरूप का अनुभव होता रहे कि मैं एक जगमगाती हुई ज्योति इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हूं। ये शरीर का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा, लाइट का शरीर हो जाएगा। तो ये तीनों स्थितियां फरिश्तेपन की अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। वो देवता ही लक्षण बोलचाल में, व्यवहार में, खान पान में, संबंध संपर्क में दिखाई देते हैं, या हम कहते हैं कि हम मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। अगर बनेंगे तो कुछ तो लक्षण होंगे ना इस समय, तो चेक करना है कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण आते जा रहे हैं। ये अंतिम कोर्स की तैयारी है। अगर केवल लक्ष्य रखा है लेकिन लक्षण नहीं आए तो हो सकता है लक्ष्य विस्मृति में आ जाए, भूल जाएगा। बहुत रॉयल संस्कार बनते जाएंगे, बहुत प्योर संस्कार बनते जाएंगे, लोगों को ये अनुभव होगा ये साधारण लोग नहीं है, ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक लोग हैं, ये अलग हैं हमसे। हमारी जो पर्सनालिटी है, रियलिटी है, वो लोगों को प्रभावित करेगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे आपकी चलन और चेहरा सेवा करेगा। वाणी से ज्ञान सुनाना तो सहज है लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होगी, बाबा की प्रत्यक्षता इससे नहीं होगी। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हम सबको, आप सब प्रवृत्ति वाले हैं, एक सुंदर आदर्श पवित्र शुद्ध प्रवृत्ति का प्रतीक सिंबल बनना पड़ेगा। आपके सिंबल को देखकर के लोग आकर्षित हों कि हाँ इनका जीवन कितना निर्मल है, कितना टेंशन फ्री है, कोई चिंता इनको नहीं है। दुनिया में किस भी हो रहा है, कितनी भी महंगाई बढ़े, कितनी भी आपदाएं आए, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये लोग कितना मौज से रहते हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता दुनिया का। तब लोगों को पता चलेगा इनके साथ कौन है, तब मानेंगे इनको भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, वो इनको गाइड करता है। ऐसे कहने से कोई नहीं मानता, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बाबा कहता आपका जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए, इतना आपके जीवन में अति इंद्रिय सुख की भासना आनी चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा सुख का अनुभव किया और फिर दुख की लहरें आई और दुख में लहराने लग गए, नहीं। ये वर्षा हमको मिला है बाबा से, सुख का वर्षा सुखदाता ने हमको दिया है। हमने दुख धाम का किनारा छोड़ दिया, इसलिए कोई के पास भी कैसी भी घटना हो दुख की लहर ना आए, तो देखो कैसे बाबा प्रत्यक्ष होता है। है दुख धाम, बहुत सी दुख की आ रही हैं, लेकिन वो दुख की लहरें मुझे दुखी न कर दें, इतना सुख स्वरूप स्थिति में मैं रहूं। क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक बेहद का नाटक चल रहा है, और इस नाटक के अंदर हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अगर मेरे साथ कोई गलत पार्ट बजा रही है तो भी उसका बहुत अच्छा पार्ट नूदा हुआ है। जब बेहद नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा बन करके देखेंगे तब वो दुख की फीलिंग उसके पार्ट को देख करके आपको नहीं आएगी, नहीं तो उसका पार्ट देख करके आप कहेंगे ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ ही क्यों करता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैं तो इसका बहुत शुभचिंतक हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। वो लहर आएगी। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों पर अंतिम परिस्थितियों की, अंतिम बड़े से बड़े पेपर की लहर ना आए, तब कहेंगे इसने अंतिम कोर्स पूरा किया है, नहीं तो फेल हो गया। तो इस अंतिम कोर्स में श्रीमत में कहीं भी कमजोरी की मन मत पर मत तैर न हो। देखना मेरा ये जीवन कभी मन मत के आधार से तो नहीं चलता है, मन अपनी बहुत मत चलाता है, और वो मन मत दे करके बाबा से भी विमुख कर देता है। अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग हो जाता, बाबा की मुरली में ही करेक्शन शुरू हो जाती। बाबा ऐसा कहता है, भी कौन बना है, बाबा कहता पास तो आठ ही होंगे, बाकी तो सबको सजा खानी पड़ेगी। तो हम लोगों की अभी कहाँ वो स्टेज है, कहाँ हम बन पाएंगे, ये मन मत। बाबा की मत है बच्चे रेस करो, अभी सीट आउट नहीं हुई है, अभी सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, रेस करो पहुंच जाओगे, ये श्रीमत है। लेकिन कई बार हम सब श्रीमत में कुछ न कुछ मनमत, चलो मनमत अगर नहीं चले तो परमत, दूसरे की मत अपना प्रभाव छोड़ जाती है। तो चेक करना कोई भी प्रकार से इस अंतिम कोर्स के अंदर किसी की मत का प्रभाव तो नहीं है। मैं सब प्रकार की मतों से मुक्त हूं, केवल एक श्रीमत। और श्रीमत कहां से मिलेगी? मुरली से। केवल बाबा की मुरली ही हमें श्रेष्ठ मत देती है, और उस श्रेष्ठ मत पर चल करके मुझे बाबा के समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बनकर दिखाना है। अभ्यास करो एक सेकंड में संकल्पों को ब्रेक देने की, फुल स्टॉप लगाने की। अच्छे वातावरण में तो लग जाती है, किसी नेगेटिव सीन के अंदर लगा के देखो, जो सीन मुझे पसंद नहीं है, और उसके बीच में जब बहुत संकल्पों की क्यू लग गई हो उस समय देखो, लगती है ब्रेक। चेक करना, रियलाइज करना कि मैं मन का इतना मालिक बना हूं, जो जब चाहूं इसको कंट्रोल कर लूं, जब चाहूं इससे परमधाम की यात्रा करूं। ये हमारा बहुत अच्छा वाहन है, वो वाहन तो कभी भी फेल हो जाएगा। स्थूल में कोई भी वाहन रखो, जब तक पेट्रोल है, जब तक उसको साधन मिला हुआ है, तब तक वो साथ देगा। लेकिन ये हमारा मन ऐसा वाहन है, इससे जहां की यात्रा करना चाहो कर सकते हो। इसको भक्ति में कहा है अंतर मन वाहन। इस अंतर मन वाहन से एक सेकंड में आप यहां से सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ, मधुबन के चारों धाम यात्रा कर सकते हो। कब? जब चाहिए कर सकते हो। किसी सेकंड भी उसको कहो, चल भाई मुझे मधुबन घुमा के ला, चल बाबा के पास अव्यक्त वतन में बाबा क्या कर रहा है उसे मिला के ले आ, चलो अपने मूल वतन में जहां हम रहते थे वहां ले चलो। लेकिन इसको बहुत अच्छा अच्छा अच्छे चिंतन का भोजन देना, गलत संग का, गलत खान पान का भोजन अगर मन को मिल गया तो ये मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये समय ऐसा आ रहा है जब मुझ आत्मा को मन जीत स्थिति में रहने की जरूरत है। और आप सबके अंदर दो शक्तियां जरूरी हैं, क्योंकि अंतिम पेपर में कई प्रकार के धोखा देने वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं भी आ सकती हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे परखने की और निर्णय करने की शक्ति हरेक के पास होनी चाहिए। कोई भी सीन आने के पहले आप परख लो, ऐसा आ सकता है, यहां से माया प्रवेश कर सकती है। ये दरवाजा थोड़ा लूज है, यहां से आ सकती है। चेक करो, रियलाइज करो کہ کوئی بھی ایسا کھڑکی دروازہ کھلا تو نہیں ہے جو من کے اندر مایا پرویش کر لے. چیک کرنا, اگر ذرا بھی کہیں پر بھی سنگ دوست کا, من مت کا, پرمت کا, کسی کا پربھاؤ اس پر ہوگا تو مانا دروازہ کھلا ہے, مایا پرویش کر جائے گی. اس لیے مایا اندر نہ پرویش کر سکے پرکھنے کی شکتی کو بڑھاؤ. جہاں سے بھی دروازے سے لگے آ سکتی ہے, الرٹ ہو جاؤ, اس دروازے کو ٹائٹ کر دو, درہ سنکلپ سے ٹائٹ کرو تاکہ وہ پھر سے اندر پرویش ہونے کی ہمت بھی نہ رکھ سکے. اور ساتھ ساتھ سامنے والے ویکتی کے بھی منوں کے بھاؤں کو آپ سمجھ سکو. یہ ویکتی جو ہم سے بات کر رہا ہے, یہ ویکتی جو ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے, اس ویکتی کی یہ جو بھاونائیں ہیں وہ کس پرکار کی ہیں. مجھے ٹھگنا تو نہیں چاہتا ہے, یہ میرے کو دھوکہ تو دے کے نہیں چلا جائے گا. انمان نہیں لگاؤ, شک نہیں کرو, لیکن اپنے من کو اتنا سوچھ بناؤ جو آپ کو اس کے من کی بھاؤں کو سمجھنے کی شکتی مل جائے, آپ کیچ کر سکو یہ ویکتی کس طرح سے بات کر رہا ہے, اس کے بات کرنے کے پیچھے کیا ادیشیہ ہے. ایسی شکتی ضرور چاہیے انتم پیپر میں پاس ہونے کے لیے. اور اس کے لیے لائن بدھی کی بہت کلین اور کلیئر چاہیے. سنکلپوں کے اندر کسی بھی پرکار کی ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے. اگر ہلچل ہے, ڈسٹربینس ہے, کہیں الجھا ہوا من ہے, بدھی کہیں میلی ہے, کوئی کے اوگن, کوئی کی برائیاں, کوئی کے پربھاؤ میں آ رہی ہے, کوئی پربھاؤ ڈال کر کے اپنی طرف آکرشت کر لیتا ہے اور کوئی اس کو نگیٹو درشیہ دکھا کر کے پربھاوت کر لیتا ہے, تو دیکھنا بدھی کہیں پر بھی ملین تو نہیں ہے. یہ میری بدھی کلین ہے, صاف ہے, سوچھ ہے, جو سامنے والی آتما کو میں پرکھ سکوں اور بابا کی ٹچنگ کو کیچ کر سکوں. بابا اپنے سبھی بچوں کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سب نے بابا کے لیے کچھ کیا ہے, کسی نے تن سے کیا ہے, کسی نے من سے کیا ہے, کسی نے دھن لگایا ہے, ہر پرکار سے آپ سب بابا کے کاریہ میں کچھ نہ کچھ سہیوگی بنے ہو. یوگی بھی ہو, سہیوگی بھی ہو, جہاں پر کوئی ضرورت ہے آپ سب کچھ بابا کے لیے سمرپت کرتے ہو, تب یہ یگ چلتا ہے, اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے. جس نے بابا کو سب کچھ دیا, بابا کے پرتی اتنا سب کیا, ماتائیں تو بابا کو بھوگ بھی لگاتی ہوں گی, لگاتی ہیں نا سبھی, کون کون لگاتا ہے ہاتھ اٹھاؤ, سبھی لگاتی ہیں. دیکھو جس کو بابا کو جو بھوگ لگاتا ہے, بابا اس کو بھوکا رکھے گا کبھی؟ کبھی نہیں بھوکا سونے دے گا. جس نے بابا کے لیے کچھ بھی کیا ہے, کوئی بھی انتم پیپر پریکچھا آئے گی, بابا فوراً ٹچ کر دے گا, بچے ایسے اس رستے سے نکل آؤ, ٹچ کرے گا. لیکن اس ٹچنگ کو کیچ کرنے کے لیے بدھی بہت سوچھ صاف چاہیے, من بہت نرمل چاہیے, کچھ بھی سنکلپوں کی مکسچرٹی ہونی نہیں چاہیے. چیک کرتے رہنا, یہ ریئلائز کرو کہ اگر ایسا کوئی انتم کورس کا انتم پیپر آ جائے تو کیا میں آتما اپنے آپ کو سچ مچ اس پیپر میں پاس کر سکتی ہوں, نرنے لے سکتی ہوں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ بات آئی ہے, اس کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے اچھے انوبھو بابا کراتا ہے, کئیوں کو ہیں, ایسا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انوبھو نہیں ہے, بہت اچھے اچھے انوبھو آپ کے پاس ہیں. بابا کی ٹچنگ آئی اور آپ نے کر لیا, یتھارتھ ہو گیا, سفلتا مل گئی. لیکن بہت کلین بدھی, کلیئر بدھی, کہیں پر بھی پھنسی ہوئی نہیں, کہیں اٹکی ہوئی نہیں, تب بابا ٹچ کر دیتا ہے. تو سب آکرشنوں کو چیک کرو. कोई भी दैहिक आकर्षण, देह की, दुनिया की, संबंधों की, संस्कारों की, स्वभावों की, किसी भी आकर्षण में मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूं। बंधी हुई की निशानी क्या होगी? कहते हैं नाव चलाने वाला खिवैया नाव में बैठा है, सब यात्री भी बैठ गए और उसने रात भर चप्पू चलाई, ऐसे ऐसे करता रहा, नाव हिलती रही डुलती रही और सवेरे देखा तो नाव वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसा तो नहीं है? नैया में तो बैठ गए, बाबा चलाने वाला खिवैया मिल गया, नाव हम खे रहे हैं, चल रही है, लग रहा है, हिल रही है, जा रही है, लेकिन किनारा कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ होगा तो नैया को कितना भी हिलाते रहो आगे बढ़ेगी? इसलिए लंगर कहते पहले खोलो, बाद में नाव चलेगी। तो बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे सब अपना लंगर समेट लो, कहीं पर भी कहीं बंधा हुआ ना हो। इसलिए कहता है बाबा, ना कोई मेरा ना कोई मेरी, मैं तो आया अकेला, जाना अकेला, खाना अकेला, रहना अकेला। कोई है अपना? ना कोई साथ लेके आया था, ना साथ लेके जाएगा। ज्ञान तो है और दूसरों को भी बड़े प्यार से समझाते हैं, लेकिन इतना अकेलेपन का अनुभव करो कि जैसे मेरा कोई नहीं, मैं सबका हूं, मेरा कोई नहीं। इतना न्यारा प्यारा निर्लिप्त होकर के परिवार को संभालो, तब कहेंगे परिवार में रहते भी कमल फूल के समान है, कीचड़ नहीं आता, पानी भी नहीं आता, छींटा भी नहीं आता। प्रवृत्ति में रह करके कोई भी विकार सताता नहीं है। एक निर्लोभी भी है, निर्क्रोधी भी है, निरहंकारी भी है, निर्मोही भी है। है सर्टिफिकेट दे सकते हो अपने आप को, सब लोग चेक करना, क्योंकि बाबा हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी बनाना चाहता है। और प्योरिटी की पर्सनालिटी के अंदर बहुत सिंपल जीवन चाहिए। कभी बाबा सिंपल सिटी की परिभाषा सुनाता है, सिंपल जीवन क्या है? है सिंपल। सिंपल उसको कहता है जो निर्क्रोधी है। हर एक चेक करो, रियलाइज करो, क्या सचमुच मैं बाबा का बच्चा बना? कुछ भी हो मुझे गुस्सा तो नहीं आएगा, अब शब्द तो मुख से नहीं निकलेंगे, मैं कभी उत्तेजित तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा चेहरा लाल पीला तो नहीं हो जाएगा, मैं शीतल काया वाला योगी हूं। रियलाइज करो, महसूस करो, भट्टी किया, क्लास सुनी, गए, फिर वैसे के वैसे, क्या फायदा? इतना समय देते हो, पैसा खर्च करते हो, दूर दूर से इतना मेहनत करके आते हो, बाबा के घर में आते हो, अगर कोई भी सूक्ष्म विकार सताता हो, बाबा के घर में आके बाबा के आगे बैठो, रूह रिहान करो, रूह से रूह बातें करे, बाबा से शक्ति लो, सकास लो और वो कमियों को बाबा के आगे स्वाहा कर दो, तब ये निर्क्रोधी बन जाएंगे। एक एक बाबा का बच्चा सचमुच क्रोध मुक्त बन जाए। जब कोई अपेक्षाएं नहीं रखोगे, जब किसी पर अपना अधिकार नहीं रखोगे, जब कोई अंदर की तमन्नाएं नहीं होंगी, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं तो तमन्नाएं पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं अधिकार रखते हैं, अधिकार रखने के बाद वो कहना नहीं मानता, तो गुस्सा बाहर आ जाता है। ध्यान रखना, प्रवृत्ति है, परिवार है, बच्चे हैं, सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य है। बाबा भी हम सबको बहुत प्यार से प्रवृत्ति के अंदर एक उदाहरण बना हुआ है, कहता मेरी इतनी बड़ी प्रवृत्ति है, आपको तो 4, 5, 6, 8, 10 की प्रवृत्ति है और मेरी तो लाखों की प्रवृत्ति है, लेकिन मैं कभी गुस्सा करता हूं, मैं गाइड जरूर करता हूं, کتنی بار بتاتا ہوں بچے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. تین دن سے مرلیاں کیا سن رہے ہو؟ کوئی ویرتھ باتیں کرے نہیں سنو, ویرتھ نہیں بولو, پھر بھی وہ چلتا ہے, سن رہے ہیں بول رہے ہیں کر رہے ہیں, پھر بھی بابا غصہ نہیں کرتا, پھر بھی سمجھاتا ہے. ایسے ہی آپ سب کرتویہ پالن ضرور کرو پریوار کے اندر, لیکن ادھیکار رکھ کر کے زبردستی نہیں کرنا, نہیں تو بہت دھوکہ ملے گا, دکھ بھی ہوگا, غصہ بھی آئے گا. اس لیے بابا کہتا بچے کرتویہ پالن کرو. ایک بہت اچھا شبد مرلی کے اندر آتا ہے, آپ نوٹ کیا ہوگا بچے, بابا نے تم کو ٹیواٹے پر کھڑا کیا ہے. ٹیواٹا اس کو کہتے ہیں جہاں تین رستے ملتے ہیں. آج تین رستے کی ٹیواٹے کی بھی پوجا لوگ کرتے ہیں, وہاں بھی تیل ڈال دیں گے, دیپک جلائیں گے, موم بتی اگر بتی جلائیں گے, اس کی پوجا کرتے ہیں, ٹیواٹے کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو بابا کہتا ہے میں نے تم بچوں کو ٹیواٹے پر کھڑا کیا, تم اپنے پریوار والوں کو ٹیواٹے پر کھڑا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف سکھ دھام کا رستہ ہے, ایک طرف دکھ دھام کا رستہ ہے, اور تیسرا سکھ دھام کے ساتھ شانتی دھام کا بھی رستہ ہے. تینوں رستے کھلے ہوئے ہیں, جس کو جس رستے پر چلنا ہے بھلے پیار سے جاؤ, بندھن نہیں ہے. لیکن اگر اس رستے پر جاؤ گے تو سدا سکھ ہی سکھ ہے. شریمت پر چلو, پوتر بنو, یوگی بنو, کھان پان شدھ رہو, سنگ اچھا کرو, بہت اچھی لائف ہے, خوش نما لائف ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اس میں چل کے دیکھو, رستہ بتاؤ. اگر کہتا نہیں بھائی میں نہیں چل سکتا, تو یہ دکھ دھام کا رستہ کھلا ہوا ہے, جانا چاہو تو بھلے جاؤ, روکو نہیں کسی کو, مارو نہیں, لیکن سمجھاؤ ضرور, باندھو نہیں. اور کہتا نہیں میں شادی بھی نہیں کروں گا, میں دکھ دھام میں بھی نہیں جاؤں گا, میں یہ بھی لائف جی نہیں سکتا, یہ بھی لائف نہیں جی سکتا, بولو اچھا کچھ نہیں کرتا ہے, بھلے نوکری کرو, کچھ بھی کام کرو, بھگوان کو یاد کرو, گھر چلے جاؤ گے, پرم دھام کا رستہ مل جائے گا. تو بابا نے ہم سب کو ٹیواٹے پر کھڑا کیا ہے. بابا کہتا ہے بچے یہ انتم سمے ہے, زیادہ بندھنوں میں بندھو نہیں, سب کو صحیح مارگ دکھا دو, نیارے اور پیارے ہو جاؤ. تن من دھن سمے سنکلپ سواس شکتی, جو کچھ آپ کے پاس ہے سب کچھ سفل کر لو. کل یہ نہ آئے کہ ارے ایسا اچانک ہو گیا, بابا تو کہہ رہا تھا لیکن میں نے سمجھا نہیں اتنی جلدی ہو جائے گا, میرا تو سب بینک میں ہی رہ گیا, میرا تو یہ سمندر کی لہروں میں سب چلا جائے گا. بابا کہتا بچے دھیان رکھو, اچانک کچھ بھی ہو تو یہ انتم کورس کہتا ہے ہے میرے بچے سب کچھ سفل کر لو. تن من دھن سمے جو شکتیاں ہیں شریشٹھ کاریہ میں لگانا ہی سفل کرنا ہے, اچھے کام میں لگا دو اور نشچنت ہو جاؤ. بابا دو روٹی کھلا رہا ہے, پیار سے پال رہا ہے, اس کی بھی چنتا نہیں, لیکن ایک چیکنگ, ایک ریئلائزیشن ضرور چاہیے, کیا میں بابا کی پالنا اور پڑھائی کا ریٹرن دے رہا ہوں؟ اتنی بابا میری پالنا کر رہا ہے, اتنا مجھے پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, اگر میں سچ مچ جو اتنا سنا ہے اس کو سوروپ میں نہیں لایا تو میں نے اس کا ریٹرن نہیں کیا. بابا چاہتا ہے جو کچھ میرے بچوں کو میں نے سنایا ہے, جو انہوں نے سنا ہے, اس سنے کے انوسار اپنی جیون گیان سوروپ بنائیں, یاد سوروپ بنائیں, دیو گن دھارناؤں سے سمپن بنائیں اور سچے بے حد کے سیواداری بنیں. یہ بابا کی پالنا کا ریٹرن ہے. ہم سب بابا کی پالنا ریٹرن دے کر کے ہی واپس جائیں گے. بابا کہتا ہے بچے ریٹرن جرنی کا سمے ہے, ریٹرن چلنا ہے جانا ہے, لیکن ریٹرن دے کر کے جانا ہے. تو ابھی سب لکش رکھنا, جو ہم سب نے اتنی پالنا لی ہے بابا سے, جو بابا نے اتنا ہمیں اونچا گیان دیا ہے, پڑھایا ہے, سکھایا ہے, اتنا لائق, اتنا پوتر یوگی بنایا ہے, ہم اپنے جیون سے अपने चरित्र से बाबा की पालना का रिटर्न दें और रिटर्न दे करके रिटर्न जर्नी ऊपर वापस चलें। तो बाबा चाहता है कि बच्चे रियल को रियलाइज करो और रियलाइज करके रिटर्न दो और रिटर्न देकर वापस मेरे पास आ जाओ। तो चलने का समय है, इसलिए अंतिम समय की तैयारी आज अभी जाएंगे। बहुत साइलेंस में जाना, अपने बिस्तर पर जाकर के अभ्यास करना, मैं इस शरीर से डिटैच हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और फिर सवेरे उठ करके इस शरीर में प्रवेश करना, मैं अवतरित हुई आत्मा नया पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। ये अंतिम कोर्स है और ये अंतिम तैयारी है जिसमें आत्मा सब बंधनों से, सब कर्म की बंधन की रस्सियों से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ओके, ओम शांति।